आप है SBS हिंदी के साथ।
SBS हिंदी में गौरव वैष्णव के साथ सुनिए शाम 5 बजे तक के मुख्य समाचार। जापान में क्रूज में फंसे ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को फोन पर दी जाएगी काउंसलिंग। भारत में असम राज्य का NRC डेटा वेबसाइट से गायब, सरकार ने कहा तकनीकी खामी। और न्यूजीलैंड के खिलाफ एक दिवसीय सीरीज में 3-0 से हारी टीम इंडिया। और अब समाचार विस्तार से। जापान में डायमंड प्रिंसेस क्रूज में फंसे ऑस्ट्रेलियाई लोगों की काउंसलिंग के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य सहायता फोन लाइन की व्यवस्था की जा रही है। आपको बता दें कि ताज़ा सूचना के मुताबिक 39 और लोगों को इस क्रूज में कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है, जिनमें एक स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल हैं। इन नए मामलों में 4 ऑस्ट्रेलियाई लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि ये क्रूज पिछले कुछ दिनों से जापान के योकोहामा में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट ने कहा कि क्रूज में तनाव के साथ इतने समय तक रहने के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए ये सेवा मुहैया कराई जा रही है।
We are working with and seeking to provide a dedicated mental health line. We look to have that done within the course of the next 24 hours. And once that's established, both the counselling and the line, then Foreign Affairs and Trade will seek to contact all Australians who are on the ship. And we're getting ahead of issues, but we recognise that the stress is real, and we really feel for those people who are in that situation.
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को आधिकारिक तौर पर COVID-19 नाम दिया गया है। ये नाम 3 शब्दों कोरोना वायरस और डिजीज का संयोजन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वायरस को दुनिया के लिए गंभीर खतरा घोषित किया है, जो पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद से ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। संस्था के प्रमुख टेड्रोस गेब्रेसियस ने बताया कि चीन में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
There were 42,708 confirmed cases reported in China. And tragically, we have now surpassed 1,000 deaths. That's 1,017 people in China have lost their lives to this outbreak. Outside China, there are 393 cases in 24 countries, with one death in the Philippines. With 99% of cases in China, this remains very much an emergency for that country.
खबर ऑस्ट्रेलिया से वापस। एक डांस स्टूडियो में एक 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का वीडियो बनाने वाले एक शख्स को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। 56 साल के एंथनी सैम्पियरी को 10 आरोपों में दोषी ठहराया गया है, जिनमें हमला और 10 साल से छोटी बच्ची के साथ बलात्कार के आरोप शामिल हैं। इस वारदात को नवंबर 2018 में अंजाम दिया गया था, जब सैम्पियरी परोल पर था और घटना के वक्त ड्रग के नशे में था। वो सिडनी के उपनगर कोगरा में एक डांस स्टूडियो के आसपास मंडरा रहा था, तभी उसने इस बच्ची को दबोच लिया। उसने एक रस्सी बच्ची के गले में बांध ली और फिर शौचालय में उसने इस अपराध को अंजाम दिया। डांस क्लास में ही मौजूद बच्ची के माता पिता ने शौचालय का दरवाज़ा तोड़कर बच्ची को बचाया, जिसके बाद इस शख्स ने उन पर भी चाकू से हमला किया। सज़ा सुनाए जाने के दौरान न्यायाधीश पॉल कॉनलॉन ने कहा कि अपराध बेहद गंभीर थे, इसलिए उन्होंने अधिकतम सज़ा सुनाई है।
I agree with the submission of the Crown that the taking of the victim in such circumstances and what happened to her during the course of her detention can only be described as every parent's worst nightmare.
प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि आदिवासी कल्याण के लिए सरकार के नए दृष्टिकोण आदिवासी और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर्स के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगे। आदिवासियों को नुकसान को कम करने के लक्ष्यों पर आई ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि 7 लक्ष्यों में से केवल 2 ही सही चल रहे हैं, जिनमें प्रारंभिक शिक्षा और 12 क्लास तक की शिक्षा शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आदिवासी समूहों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि अप्रैल तक 15 लक्ष्य निर्धारित किए जा सकें। उन्होंने कहा कि ये समय है जबकि बदलाव होने चाहिए।
The targets that were set for Indigenous Australians, not by Indigenous Australians, do not celebrate the strengths, achievements and aspirations of Indigenous people. They don't tell you what's happening on the ground or stirring under it. They don't tell you how realistic or achievable these targets were in the first place. They reinforce the language of failing and falling short, and they also mask the real progress that has been made.
इसके अलावा सरकार ने एक आदिवासी सलाहकार समूह स्थापित करने का विकल्प चुना है, लेकिन नेता विपक्ष एंथनी एल्बनीजी ने कहा कि उनकी पार्टी आदिवासियों के लिए साल 2017 के उलुरु स्टेटमेंट्स का समर्थन करती है।
The voice is a modest request that Aboriginal and Torres Strait Islander peoples be consulted about issues and policies that directly affect them. That's what it is. It is not a third chamber. It is not deliberative. It merely seeks to put a structure around what we would all regard as Australians as decency, as courtesy, and as respect.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो फरवरी में अपनी भारत यात्रा को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर 24 और 25 फरवरी को भारत की यात्रा पर होंगे। वो अहमदाबाद भी जाएंगे और वहाँ एक स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और अब खबरें भारत से। भारत के राज्य असम में एनआरसी का अगस्त में प्रकाशित किया गया फाइनल डेटा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की वेबसाइट से गायब हो गया है। ये डेटा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रकाशित किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि डेटा सुरक्षित है और कुछ तकनीकी खामियों की वजह से क्लाउड से गायब हुआ है। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि समस्या का जल्द ही हल निकाल लिया जाएगा। वहीं एनआरसी अधिकारियों का कहना है कि डेटा इसलिए वेबसाइट से गायब हो गया क्योंकि आईटी कंपनी विप्रो का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया गया। असम में विपक्षी पार्टी ने इसे बदनीयती से किया गया कार्य करार दिया है। दिल्ली में चुनाव परिणामों का आखिरी आंकड़ा साफ हो चुका है। 70 विधानसभा सीट वाली दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को एक बार फिर सबसे ज़्यादा 62 सीट मिली हैं। बीजेपी के खाते में 8 सीट आई है, जबकि कांग्रेस इस बार भी खाता नहीं खोल पाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हैट्रिक है। पिछले दो बार पार्टी को 60 से ज़्यादा सीटें मिली हैं, हालांकि 2015 के मुकाबले इस बार उन्हें 5 सीटों का नुकसान हुआ है। इस जीत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों को धन्यवाद दिया।
दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। आई लव यू। मैं सभी दिल्ली वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने तीसरी बार अपने बेटे पे भरोसा किया।
वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने हार स्वीकार करने के बाद कहा कि उन्होंने कभी भी बांटने की राजनीति नहीं की। हालांकि उन्होंने कहा कि शाहीन बाग के धरने के वो पहले भी विरोधी थे और आज भी विरोधी हैं।
भविष्य में भी नहीं चाहेंगे कि लोगों का 60-60 दिन उनका रास्ता रुक जाए और लोग आकर के अपने प्रोटेस्ट के लिए, जैसा सुप्रीम कोर्ट भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने प्रोटेस्ट के लिए रास्ता ही रोक दो, दो दो महीना। हम उसका कल भी विरोधी थे, हम उसके आज भी विरोधी।
उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि क्यों लोगों ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी को वोट दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के खिलाफ हो रहे अत्याचार में इनमें से किसी भी पार्टी ने दिल्ली का साथ नहीं दिया। हालांकि उन्होंने अपनी हार स्वीकार की।
ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं जो भी डिबाकल हुआ दिल्ली कांग्रेस के अंदर, मैं उसकी पूरी जिम्मेवारी लेता हूँ। सच्चाई है, मैं कांग्रेस का मुखिया हूँ और मेरे समय में ये हुआ, ठीक है, मेरे पास समय कम था। 3 महीने के लिए, 3 महीने मुझे हुए यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बने हुए।
दक्षिण पश्चिम दिल्ली के किशनगढ़ गांव में आप विधायक नरेश यादव के काफिले पर मंगलवार देर रात को कुछ लोगों ने गोलियां चलाई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और एक दूसरा शख्स घायल हुआ है। इस घटना में 3 लोगों के खिलाफ हत्या और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक इनका निशाना आप विधायक नहीं थे, बल्कि इन्होंने पुलिस को बताया है कि ये अशोक मान नाम के एक शख्स और उसके भतीजे को मारने आए थे। बदमाशों ने अशोक मान पर नज़दीक से 6 गोलियां दागी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और अब डॉलर का हाल। आज यानी बुधवार को ये खबर लिखे जाने तक भारतीय रुपयों में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 47.92 रुपये थी, जबकि अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 67 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। न्यूजीलैंड की टीम ने भारत के खिलाफ माउंट मानकानवी में खेला गया एक दिवसीय मैच जीतने के साथ ही एक दिवसीय सीरीज को 3-0 से जीत लिया है। इससे पहले T20 सीरीज में न्यूजीलैंड को 5-0 से हार का सामना करना पड़ा था। तीसरे मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने KL राहुल के 112 रन, श्रेयस अय्यर के 62 रन और की बदौलत 50 ओवर में 7 विकेट पर 296 रन बनाए। वहीं न्यूजीलैंड ने ओपनर मार्टिन गप्टिल के 66, हेनरी निकोलस के 80 और ऑलराउंडर कॉलिन के 58 रनों की मदद से लक्ष्य को 47.1 ओवर में महज 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद मैदान पर ख़राब व्यवहार के लिए ICC ने बांग्लादेश के 3 और भारत के 2 खिलाड़ियों को दोषी माना है। टूर्नामेंट के फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को 3 विकेट से हराकर चैंपियन बनने का श्रेय हासिल किया था। मैच का फैसला डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर हुआ। मैच के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने कुछ ज़्यादा आक्रामक रुख दिखाया। इस दौरान उनकी भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ झड़प हो गई। बाद में अंपायरों और मैदान पर मौजूद अधिकारियों ने इस टकराव में बीच बचाव किया। ICC ने इन सभी खिलाड़ियों को डिमेरिट अंक दिए हैं। और अब डालते हैं नज़र कल यानी गुरुवार के दिन मौसम के हाल पर। शुरुआत पर्थ से। पर्थ में कल दिन भर धूप रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में भी धूप रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने का अनुमान है। यहाँ उमस भी रह सकती है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। देश की राजधानी कैनबरा में छिटपुट बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। सिडनी में बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में भी बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में आंधी के साथ छिटपुट बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। भारत की राजधानी दिल्ली में धूप रहने की संभावना है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 27 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। खबरों में आज इतना ही।
करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।